पूछते भगवान कहां रहते हैं। भगवान ने भी वाल्मीकि जी से कहा कि वाल्मीकि जी महाराज मैं कहां रहूं, तो भगवान ने कहा आप कहां नहीं हो, जहां नहीं हो उनमें से जगह बता दे। ऐसे ही लोग भी कहते हैं भगवान कहां रहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कहां रहते हैं इसकी जगह बताने का अर्थ बहुत उल्टा हो जाएगा, कि बैकुंठ में रहते हैं इसका मतलब यहां नहीं रहते, यहां रहते हैं इसका मतलब वहां नहीं रहते। इसलिए कहा कि भगवान कहां रहते हैं, भगवान आपके अंदर रहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को अपना मानता है ये मैं हूं, उसमें भगवान रहते हैं। कहते हैं जहां अपने आप में होनेपन का ज्ञान नहीं है वहां नहीं रहते हैं क्या, वो बात भी पता चल जाती है। खंबा है ये कभी नहीं कहता कि मैं हूं। अब इसमें भगवान है कि नहीं, तो है, पर इसका बोध कब होगा, जब हम अपने में भगवान मानेंगे। अपने में भगवान है, फिर पूछते हैं कि भगवान क्या खाते हैं, तो भगवान की खुराक बताएं आपको क्या खाते हैं भगवान। हम लोग ठाकुर जी के सामने मिठाई रखते हैं, फल रखते हैं, वस्त्र रखते हैं, तो मंदिर में जाकर चढ़ाते तो इसलिए कि भगवान आप भोग लगाओ। वास्तव में वो हम भगवान के लिए नहीं रखते हैं। हमारा जो वस्तु में ममता का संबंध है, वो ममता का संबंध भगवान को खिलाते हैं भगवान, ये भोजन है, इसमें हमारी ममता है, ये हमने आपको अर्पित कर दी है। अब ममता ममता तो भगवान खा लेंगे और भोजन हमको दे देंगे। हमारा पेट भोजन से भरेगा और भगवान का पेट हमारी ममता खाने से मिटेगा। हमारा जो अहंकार है उसको भगवान के अर्पित करते हैं, अहंकार खाते हैं भगवान, ये भगवान की खुराक है। बड़े प्रेम से देखो, संसार में कोई भी लेने वाला होता है वो अच्छी अच्छी चीज लेता है, बुरी चीज कोई नहीं लेता। भगवान कहते हैं कि जिससे तुम्हारा नुकसान होता हो वो चीज मेरे को दे दो, मैं हजम कर लूंगा। ममता है, कामना है, राग है, द्वेष है, अभिमान है, क्रोध है, ये सब मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे में तो हजम हो जाएंगे, तुम निहाल हो जाओगे। ये भगवान की खुराक है। कितनी विचित्र बात है। जिन भक्तों के मन में जरा सा अहंकार पैदा हुआ उन भक्तों को तो पता ही नहीं चला कि मेरे में अहंकार है, लेकिन भगवान ने उनको दूर किया। प्रसमाय प्रशांताय, गोपियों के मन में बहुत थोड़ा सूक्ष्म अहंकार हुआ था, भगवान चट उस अहंकार को समाप्त कर दिए। भगवान के साथ जो जुड़े रहते हैं उनका अहंकार भगवान को अच्छा लगता है, हर किसी का नहीं। जो भगवान से जुड़े ही नहीं उसका अहंकार भगवान क्यों खाएंगे। ब्रज के अंदर भगवान ने माखन खाया, छिप करके खाया। किनका खाया? कि जो चाहती थी कि मेरा माखन खा जाए उनका माखन खाया, हर किसी का थोड़ी है। ऐसी कोई गोपिका नहीं है जिसको पता नहीं चला कि मेरा माखन कौन खा गया। सब शिकायत करते हैं कि तुम्हारा कृष्ण खा गया, देखो यशोदा जी तुम्हारा कृष्ण ये माखन खा गया, मेरा माखन तूने देखा कि मैंने देखा? कैसे देखा? ये बच्चों के ऊपर चढ़ करके हांडी को लिया, लकड़ी को तोड़ के लिया, ऐसे लिया वैसे लिया और चोर के खा गया। तो यशोदा जी हंसती है, तू देख रही है चोर के खा गया, ये कैसे बात है? तेरे सामने खाया उसने, साहूकार है मेरा बेटा, माखन खाया माखन खाया, चोरी का नाम लगाते हो, तुम देख रही हो छिप रही हो देख रही। अच्छा, इसकी चोरी से तुम्हारे मन में प्रसन्नता हुई कि नहीं ये बताओ? खुशी आई कि नहीं? चेहरा बदल गया कि नहीं? हृदय में आनंद की हिलोरे आई कि नहीं? तुम इसको पकड़ने के लिए दौड़ी कि नहीं? तुम इसको पकड़ने के लिए दौड़ी जा रही हो? छोटा सा बच्चा इधर उधर दौड़ता है, तू दौड़ती दौड़ती कभी एक बार पकड़ लेती है तो इसके शरीर के स्पर्श से तुमको बड़ा आनंद मिलता है, फिर ये बच्चा छुटा के जाता है, फिर दौड़ी दौड़ी आती हो, कितनी आनंद में डूबी हुई हो। चोरी यदि हो जाती तुमको आनंद मिलता कि दुख होता? यशोदा जी की बातें सुनकर सब चुप हो गई कि यशोदा जी हम तो केवल श्याम का मुख देखने आए थे, मुख देखने तो चोरी थोड़ी की भगवान, साहूकारी की, सबके बीच में खाया, निमंत्रण दिया तब खाया, सबने यही कहा कि हमारे आए माखन खाया। ऐसे ही दूसरे जो भगत होते हैं उनके भगवान छिप छिप करके अहंकार खाते हैं, अहंकार से सारे दोष पैदा होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, देहाभिमान में सारे दोष पैदा होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ममता राग द्वेष सब पैदा होते हैं। तो भगवान ये अभिमान खाते हैं, अभिमान। जो भगत पहले कैसा होता है और अभिमान के बाद देखो कैसा होता है। संतों ने कहा है यदा किंचित यो हम विपैव सम मदांध समभवम। यदा किंचित यो हम, जब मुझे कुछ कुछ भक्ति का ज्ञान मिला, जब मुझे कुछ कुछ प्रेम का स्वाद मिलने लगा, तो मैंने सोचा कि मेरे बराबर संसार में कोई नहीं है। यदा किंचित यो हम द्विपाय मदांध समभवम, हाथी की तरह मदान हो गया है। चलू भाई ऊपर देखे चल चल, रास्ते पर चलू तो बस रास्ता छोटा हम चौड़े है। और यदा बुद्ध जन सकाशात अवगतम, जब मैं पूजनीय महापुरुषों के बीच में बैठा जो सबके अंदर भगवत बुद्धि रखने वाले, अच्छे बुरे सबको हाथ जोड़कर बात बतलाने वाले, भीतर में जिनके भाव है कि भगवान का रूप है, अलग अलग चाहे हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, है भगवान का रूप, ऐसे महापुरुषों के पास गया तो ज्वरा ही हमें व्यपगत है, वो अभिमान मेरा बुखार की तरह उतर गया। थोड़ी देर पहले बुखार इतना डिग्री और दवाई ली आराम हुआ कि दूसरे जैसा बुखार एकदम उतर गया। ऐसे भगवान के शरण हो जाने के बाद भगवान की भक्ति का कुछ भी अंश हमने पकड़ लिया, उसके बाद यदि कोई अभिमान वगैरह होता है भगवान दूर करते हैं। ये भक्ति मार्ग में है विशेषता, ज्ञान मार्ग में थोड़ी कठिनाई रहती है। ज्ञान मार्ग में अपनी आफत को खुद को ही दूर करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग में जो बच्चे होते हैं वो बंदरी के बच्चे के समान होते हैं और भक्ति मार्ग में बिल्ली के बच्चे के समान भगत होते हैं। बिल्ली होती है अपने बच्चे को दांतों में लेकर उठाता है, ये दांत से नहीं पकड़ता, बच्चा है गिर जाए दांतों के ऊपर होंठ लेकर के उनकी गर्दनियों पकड़ती है, चमड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलती है। बिल्ली बच्चों को एक जगह नहीं रखती, बदलती रहती है। बंदरी होती है वो फुदकती है तो उसके बच्चे अपने पंजे से ही अपनी माँ को पकड़े रखते हैं, छूट जाए तो वो क्या 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 बंदरी तो यहां से वहां छलांग मारेगी। अब उसका बच्चा मजबूती से पकड़े तो ठीक और छूट गया तो वो जाने उसका काम जाने। ऐसे ही ज्ञान मार्ग वाले साधक होते हैं, उनके लिए बताया कि वो वानरी शिशु, वो बंदरी के बेटे के समान। और भक्ति मार्ग के होते हैं वे कि वे बिल्ली के बच्चे के समान। तीन में मैं रहूं रखवारी, भगवान कहते हैं मैं उनकी रखवारी वैसे ही करता हूं जैसे मां बच्चे की करती है, रातों जागती है मां। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, प्रेम तो मां का वही है पर रखवारी वैसी नहीं होती है। 60 वर्ष का बेटा है, मां है कि बेटा भोजन कर लिया कि नहीं, तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है कि मां कर लिया भोजन। अब 60 वर्ष का बेटा है, उसके खुद के बेटे पोते हो गए लेकिन मां को तो वो बच्चा ही दिखता है, रोटी खाई कि नहीं, ऐसा किया कि नहीं, वैसा किया। परंतु हवा देकर के रखवाली करे ऐसी बात नहीं है। छोटा बच्चा होता है उसके हवा देगी, रात भर जगेगी, ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। काय से विकारों से, इसलिए भक्तमालकार ने भक्ति के मार्ग को और भक्ति पर चलने वाले उन महापुरुषों को बहुत आदर दिया। आज आपको मोरत ध्वज की कथा सुनाते हैं। मोरत ध्वज, मोरत ध्वज और ताम्रत ध्वज ये पिता पुत्र थे। मोरत ध्वज था पिता, ताम्रत ध्वज था उसका बेटा, और इनकी राजधानी थी रतननगर। बड़े अच्छे धर्मात्मा पिता पुत्र थे। इन्होंने अपने प्रजा में सबको वैष्णवी दीक्षा दी। देखो दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक वैद्य की दीक्षा होती है, एक वैष्णवी दीक्षा होती है। अर्थात जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार दिया गया है शास्त्र ने, वे वैदिक विधि के अनुसार जनेऊ धारण करें, वैदिक विधि के अनुसार वे आचरण करें, और जिनको वेदों ने जनेऊ आदि के प्रपंच से मुक्त किया है कि भाई आप लोगों से ये काम सज नहीं आ सकता, तो उन लोगों को वैष्णवी दीक्षा से उन्होंने दीक्षित करके और उनको भगवान की तरफ लगाया। काम दोनों का एक ही है। ये तो आजकल थोड़ा मति भ्रम हो गया, शास्त्र के मर्म को जानते नहीं, इसलिए हमारे शास्त्रों पर चाहे जैसा आक्षेप लगाने लग गए, पक्षपात कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों पक्षपात करेंगे, किससे क्या लेना देना, पर स्वयं का दोष होता है वो दूसरे पर दिखता है। अब हमारा मुंह जैसा भी होगा वो इसमें दिखेगा। अब ये कितना साफ है, चिकना है, लेकिन यहां दाग होगा, ये होगा, वो होगा, तो इसमें दिखेगा। साहब ये पत्थर खराब, पत्थर खराब नहीं, चेहरा खराब। आपके शास्त्र में ये लिख दिया, आपके शास्त्र में जाति पाति कर दी, आपके शास्त्र में मनुष्य मनुष्य में भेद डाल दिया। हमारे शास्त्रों ने नहीं डाला है, डाला है आपकी सत्ता की लालसा ने। अस्तु, तो ये दो दीक्षा होती है, एक वैदिकी दीक्षा और एक वैष्णवी दीक्षा। भगवान विष्णु की तरफ सब चले हैं, तो जिनको वैदिकी दीक्षा में रुचि नहीं होती वे वैष्णवी दीक्षा से अपना कल्याण करें। इस प्रकार से सारी प्रजा वहां भगवान में लगी हुई थी। और इधर मोरत ध्वज का संत महात्माओं में बड़ा प्रेम, संतों के अंदर वो दूसरी बात देखते ही नहीं थे कि इन संतों में क्या है क्या नहीं। बस वस्त्र संत का है, बस वो वस्त्र के कारण से आदर करते थे, वस्त्र के कारण। वस्त्र के कारण, वस्त्र मात्र से उठते खड़े होते, आदर करते, भोजन कराते, सब करते, ऐसा उनका स्वभाव। एक बार क्या हुआ, तीन चार चोरों ने मिलकर के विचार किया कि देखो हमारा राजा कितना मूर्ख है, जो लाल कपड़ा पहन लिया बस उसको महात्मा मानते हैं, बड़ी श्रद्धा करते हैं, महलों में भोजन कराते हैं, अपने महल को उन महात्माओं के भरोसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अपने भी साधु बन जाओ, साधु बन करके और इनके यहां जितना हो सके माल लूट लो। तो चार चोर थे, चार चोर साधु का रूप बनाए, बड़ा टीका लगाया, दाढ़ी वगैरह बनी हुई, बढ़िया लाल कपड़ा पहना हुआ, अलग निरंजन करते हुए आए। अरे महात्मा जी आए, महात्मा जी आए, सारे महल में महात्मा जी आए। राजा ने खड़ा होकर के उनका अभिवादन किया, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए, भोजन कराया, बातचीत की, बड़ी कृपा की आप मेरे यहां पधारे। तो अब ऐसा है कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं और मैं आऊं जितने आप यही मेरा ठीक है, ये तो चाहते ही थे। तो राजा साहब चले गए बाहर, उनको कहीं और जगह जाना था। इन चारों ने मिलकर के विचार किया हम क्या करें कि रानी अकेली है, पहरेदार तो आगे रहते हैं, रानी को मार दो। तो रानी का गला मोस दिए, मार दिया। अब उन्होंने खूब धन लूट लिया, खूब लूट लिया, लूट करके बोरा भर लिया। राजा के यहां क्या कर, खूब बोरा भर भर के ये चारों महल से निकले। आगे पहरेदार बाबा जी, आप यहां से गए थे तब तो कुछ नहीं था, ये बोरे ही मिला। ये बोरे में हमारी संत मंडली है, रानी ने हमको खूब सा फल दिया है, फल ले जा रहे हैं संत मंडली के लिए। ओ रानी का हृदय तो उदार है, राजा ऐसा तो रानी कम क्यों रहेगी, बहुत अच्छा, जाओ ले जाओ। चले गए, चले गए, जंगल में गए। योग की बात थी कि उधर से राजा आ गया। राजा आया तो जो है वो एकदम सकफक आ गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक जगह कहीं चोरी हो गई, चोर था वो आकर के, कहीं मीटिंग थी उसमें बैठ गया, लोगों का खूब समुदाय था वहां बैठ गया, दाढ़ी रखते थे सब लोग। अब एक आदमी जो चोर की खोज कर रहा था, उसने कहा देखो भाई आप में एक चोर बैठा है, मैंने उस चोर को पहचान लिया है, या तो वो पहले से अलग हो जाए नहीं तो फिर हम सबके बीच में उसको पकड़ेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो जिसने चोरी की थी उसने यूं संभाला मेरे तिनका है क्या, वो यूं संभालने लगा तो उसको जाके पकड़ा चले। तब से एक कहावत बन गई कि चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका। उसको पता ही नहीं था कि हमें से कौन है, क्या भाई जो चोर है उसके दाढ़ी में तिनका है, संभाले मारे तिनको है कि नहीं, तुम्हारे तिनको तो कौन नहीं, बस तू संभाले क्यों, जब तू चोर नहीं है तो तिनके को तू संभालता क्यों है, तूने देखा कि तिनका है तो मैं निकाल दू तो पकड़ा गया। ऐसे ही चोर जो देखे हो, देखे वो भगने लगे, महाराज ऐसे कैसे जा कर रहे हो, भगो का महाराज आपको सौगंध है मेरी, ठहरो ठहरो। तो कहा कि महाराज राजन हम साधु नहीं है, हम तो चोर हैं। अरे अरे ऐसे कपड़ा पहनने वाला कभी चोर होता है, चलो मेरे अभी महल में चलो, महल में चलो, महल में चलो कि महाराज जी हमने चोरी की है, अब कभी चोरी नहीं करेंगे, महाराज हमको माफ कर दो, क्षमा कर दो। अरे सवाल ही नहीं उठता, आपको भी चोर हो ही नहीं सकते, ले आप अपना सामान कर, सामान ले और मेरे महल में चलो, अभी आपका सत्कार बाकी है महाराज। उन्होंने देखा कि राजा अकेला तो है नहीं, पीछे राजा के साथ के आदमी और आगे घोड़े पर। राजा ने कहा महाराज कृपा करो, आप कहो तो हम आपको घोड़ों पर बैठा दें। लोगों से कहा देखो भाई आप लोग अपने अपने घोड़े से उतर जाओ, और ये हमारे महाराज हैं, इनको एक एक को घोड़े सही दो, इनका जो ये सामान है सामान सही दे, चल चल महल में ले गए। वो तो उतर गए, पहले पाले पाले आए घोड़े पर लाए, अंदर ला करके, और महाराज हमने बहुत चोरी की है महाराज, बड़ा गुनाह किया। अरे नहीं आप चोर हो ही नहीं, बैठाया सिंहासन, उनके चरण धोए राजा ने। उधर वो क्या रानी को बुलाओ, रानी कहां, रानी को बुलाओ कि महाराज महारानी साहब तो आराम फरमा रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जगा देंगे, उन्हीं को उनके चरणामृत को लेकर राजा ने अपने पर छिड़का और जो चरणामृत भाग्य था वो ले जाकर के रानी पर छिड़क जाए। अरे संतों की चरण रज है, ये चरणों का जल है, उठो उठो उठो। रानी उठ गई, रानी उठ गई। महाराज ऐसे कौन से संत आए जिनके चरणों के उदक से जल से मैं मरी भी जी गई। अरे अपने यहां संत भी कम आ, चलो देखो दर्शन करो संतों के। जाके देखा कि महाराज ये तो चोर है, ये तो मेरे को मार गए, तुम्हारी दृष्टि खराब है। हमारे यहां आए हुए संतों को ऐसा बोलोगी तो ठीक नहीं होगा, इनकी कृपा से तू जी गई ऐसा मान रही है, ये चोर है। राजा कुपित हो गया रानी पर। चोरों ने जाकर के राजा के कहा, महाराज वास्तव में हम चोर हैं, हमने बहुत अपराध किया है, महारानी साहिबा को हमने मारा है। कहा कि नहीं साहब, आपने नहीं मारा है, छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जब एक नकली स्वांग किया हमने साधु पढ़े, उसमें भगवान ने हमारी लाज बचाई, हमारे पैर को धोने पर मरी हुई महारानी जी जीवित हो गई। यदि असली साधु बन जाए तो हमारी क्या दशा हो। राजा ने राजा से पूछा कि महाराज हम आपसे एकदम खुल करके बात करते हैं, हम वास्तव में चोर ही थे, लेकिन हमारे पैरों में धोने में ऐसी शक्ति कैसे आई कि वो मरी हुई रानी जीवित हो गई। उनका कि जो संतों में मेरी श्रद्धा है ना, उस श्रद्धा ने काम किया है, तुम्हारे चरणों तक ने नहीं किया है। मैं भगवान की भक्ति के अंदर श्रद्धा देखता हूं, भगवान की भक्ति आप में है, उस भक्ति की श्रद्धा से मैंने चरण धोए तो उसकी कृपा से जीवित हुए। ये आपके चरणों तक से नहीं, मैं आपने पूछ लिया इसलिए बताता। फिर वे जाकर के असली संत बन गए। ऐसे मोर ध्वज की बहुत सी बातें थी। तो मोर ध्वज जब भगवान का इतना भक्त था तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी राजधानी के अंदर चारों तरफ रक्षा के लिए रख दिया कि भाई मोर ध्वज भक्ति में लगा रहे तो भाई तुम यहां रक्षा करो, इसके राज्य में कोई आफत न आ जाए। तो यमराज जी के दूत कभी किसी व्यक्ति को लेने के लिए जाते तो सुदर्शन चक्र उनको प्रताड़ित करके भगा देता, निकलो यहां से, ये मोर ध्वज की नगरी है, कैसे आए तुम यहां। एक को, दो को, चार को, सौ, दो सौ को ऐसे किया तो धर्मराज बिगड़ गए। धर्मराज गए भगवान के पास कि महाराज एक फरियाद लेकर आया हूं, बोलो ये मोर ध्वज के यहां आपने अपने सुदर्शन को रख दिया, वो हमारे सैनिकों को वहां जाने ही नहीं देता। मनुष्य तो मान ले कि धर्म पुरुष है, कोई बात नहीं, पशु पक्षी आदि भी तो उस नगर में मरते हैं, उनको तो हम लाए कम से कम, ये सुदर्शन चक्र ले जाने आने नहीं देता। भगवान ने कहा, धर्मराज जी जो मेरी भक्ति करता है उसकी रक्षा का दायित्व मेरे पर है, उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो ऐसा कौन सा भगत आ गया, भगत तो आपके बहुत होते पर ऐसा तो कोई भगत नहीं। देखो भगत भगत में अंतर होता, ऐसा भगत हमको मिला नहीं जैसा मोर ध्वज है। क्या महाराज आप भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, बातों में आ गए, कोई बात नहीं, परीक्षा कर लो। तो भगवान बन गए संत और धर्मराज को बना दिया सिंह। जैसे आजकल के लोग क्या बताएं, बंबई में देखते हैं यहां बेल्ट बांधे रखते हैं, सुबह घूमने के लिए जाते हैं वे लोग साथ में कुत्ते को बांध करके उसको भी अपने साथ में चला जाते हैं, उसके साथ दौड़ते हैं खेलते हैं। भारतवर्ष में ये हो रहा है, भारतवर्ष में हिंदू समाज में ऐसे भगवान ने भी साधु का वेश बनाया। यहां पर एक दुपट्टा पहन करके उसको सिंह को अपने साथ ही रख बांध दिया और भगवान चलने लगे। सिंह भी घौ घौ करता चलता खाता नहीं था सिंह। मोर ध्वज के वहां पहुंच गए। सिंह तो था यमराज, साधु थे भगवान। मोरद आओ महाराज, आओ महाराज, कृपा करी, बड़ी कृपा की। टीका लगाया, चरणों में प्रणाम किया, सब किया। क्या कि महाराज भोजन करो। देखो भाई, भोजन तो हम कब करेंगे जब हमारा सिंह भोजन करेगा। सिंह भूखा है तो सिंह भोजन करेगा तो भोजन करेंगे। महाराज सिंह को क्या भोजन करा है? अब भाई सिंह है ना, ये तुम्हारे बेटे को खाना चाहता है, तुम्हारे बेटे का मांस खाना चाहता है। तुम्हारे बेटे का मांस खिलाओ इसको, तब तो ये सिंह तृप्त होगा, और ये तृप्त होगा तो मैं तृप्त होऊंगा, नहीं तो चले हम। नहीं महाराज, ऐसे कैसे चलते? बुलाया अपने बेटे को। भगवान ने कहा कि देखो बेटे को सीधा कैसे बुलाया है। बेटा केवल पिता का नहीं होता है, बेटे पर ज्यादा हक मां का होता है। इसकी मां से पूछो। तो रानी को बुलाया कि देखो ये संत आए हैं, ये संत शेर पालते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को खाने से मेरे शेर की भूख मिटेगी और इसकी भूख मिटेगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरी भूख मिट जाएगी और इसके खाने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। बताओ आपको शर्त मंजूर है? अपना बेटा अपना क्या है? सब संत महात्माओं का है, मां ने कह दिया। भगवान ने उस सिंह के सिर पर ही हाथ फेरा, आंख से आंख मिल गई कि बताया ना ये मेरा भगत है। लाओ अब बेटे को लाओ, बेटे को लाओ। बेटे ने आकर के हाथ जोड़ा, संतों को हाथ जोड़ा और सिंह को हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नृसिंह भगवान, मेरे पिता के राज्य में कहीं पर भी सिंह प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसे मेरे पिता का प्रभाव है, सिंह है, हाथी है, ये मार्ग जंतु मेरे पिताजी के राज्य में आ ही नहीं सकते हैं। आप यहां महल के अंदर पधार गए बेरोक टोक और आपको देख करके कोई घबराहट नहीं होती है, तो आप साक्षात नृसिंह भगवान हैं और आपको यदि मेरा शरीर भोग के अंदर लगता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या प्रसन्नता की बात होगी। जाकर के सिंह के पास लेट गया, लो खाइए। यूं लेट गया आंख बंद करके, मुंह के आगे अपने नस कर दी, ये मुंह है सू दिया। इतने ही ताम्र ध्वज को सुनाई दी आवाज, उठो उठो। यो उठा तो सचमुच भगवान तो भगवान थे, सिंह दिखाई नहीं दिया और साक्षात भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप से उसको दर्शन दिए। वो गाय धर्मराज जी की, सिंह सब गाय। ताम्रध्वज को यूं देखा तो पिताजी कहने लगे, बेटा क्या देखा तूने? पिताजी भगवान, भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन। ये तो संत है, संत तो है, संत है, लेकिन भगवान है ना, देखो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पर, तो मुकुट देखो ना इनका, पीतांबर देखो, कैसा सुंदर इनका चरणारविंद, कैसा मुखारविंद, देखो पिताजी क्या शोभा है। ऐसे करते करते नाम बेहोश हो गया। वो कहते संत है, संत अर्थात ताम्र ध्वज को भगवान ने अपना रूप अपना था वैसा बताया, और मोर ध्वज को ही संत में श्रद्धा थी, उस संत का रूप देखे। भगवान ने कहा आप दोनों कोई वरदान मांगो कि महाराज आपके चरणों में और संतों के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, कुछ नहीं चाहते। एक बार ये मोरत ध्वज है, ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, सात तो कर लिए आठवां कर रहे थे। उन्हीं दिनों में युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ दिया। इधर मोरत ध्वज को पता चला कि युधिष्ठिर का घोड़ा हमारे इधर ही आएगा। अपने बेटे ताम्र ध्वज को कहा कि बेटा मैं तो यज्ञ में रहूंगा, तुम बहुत सावधानी से अपने यज्ञ की रक्षा करना और तुम भी अपने घोड़े को लेकर के चलना। ठीक है। चलते 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 अकस्मात एक घोड़ा आया, उसके ऊपर सोने का पात लिखा हुआ, महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ है, उसमें अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, है किसी की हिम्मत तो हमको पकड़ो। ये घोड़े के ऊपर लिखा हुआ। ताम्र ध्वज ने पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। मंत्री को कहा मंत्री जी इस घोड़े को पकड़ ले आओ अपने। मंत्री ने कहा महाराज इसकी रक्षा में कृष्ण अर्जुन और सेना ये और लिखी हुई है, मैं कहता हूं आप ले आओ, निर्भय होकर के लाओ, कोई कृष्ण से अर्जुन से डरने की जरूरत नहीं है। पकड़ लिया लेकर के और अपनी जगह पर ले गए। ताम्र ध्वज मंत्री को कह के ले चले। थोड़ी देर में भगवान कृष्ण अर्जुन और सेना आई, इसने अपनी सेना का व्यू आकार बना लिया और आगे आकर के ताम्र ध्वज कहने लगा, हे कृष्ण मोर ध्वज का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता है। देखो महाराज आपके चरणों का प्रताप देखो, मैं ना कुछ आदमी आज आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, करो आप युद्ध, मेरे पास कोई बल नहीं है, केवल आपके दर्शनों का बल है और कोई बल नहीं। नहीं भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा है, देखा क्या भाषा है इसकी, ये मामूली बलवान नहीं है, लेकिन भाषा देखो हमको ललकार रहा है, हमको जीतने की इच्छा रख रहा है और हमारा ही बल ले रहा है। तुम बार बार कहते हो मेरा गांडीव धनुष, मेरा गांडीव धनुष, इसकी शब्दावली पर विचार कर कि आपके बल से आपसे युद्ध करूंगा। तुमने कभी कहा? अर्जुन ने कहा बातें बनाने से क्या होता है कृष्ण, इसके पास कोई बल तो है नहीं, चलो करो युद्ध करो, तुम करो नहीं बल है तो। खूब युद्ध होने लगा, अर्जुन ने सारी सेना का नाश कर दिया। अब ये ताम्र ध्वज आगे आया सेना के, अर्जुन से कहने लगा अर्जुन तुम बड़े श्रेष्ठ योद्धा हो, मेरा तो आज उपकार कर दिया, ये सेना हमारे बीच में से हटा दी, अब सीधा कृष्ण का दर्शन होता है, चलने दे, मैं तुझ पर बाण चलाता हूं तू मुझ पर बाण चला, तेरी दृष्टि को कहां तू जाने, मैं तो केवल कृष्ण को देख देख के बाण चलाऊंगा। ऐसे बाण चलाए, ऐसे बाण चलाए, अर्जुन थक गए। अर्जुन ने कहा कृष्ण तो कोई विलक्षण पुरुष है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम कि मैं तो थक गया, अरे कौरवों की सेना क्या पता क्या बात, पितामह भीष्म से नहीं डरा, द्रोणाचार्य से नहीं डरा, कर्ण से नहीं डरा, शल्य से नहीं डरा, मतलब डर गया, लड़ नहीं सकता। अब तो आपको लाज रखनी पड़ेगी मेरी। भगवान आए शस्त्र लेकर, भगवान आए सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र फेंकने वाले थे, इतने में ही तामर ध्वज दौड़ा दौड़ाया, हाथ को पैर लिया, एक हाथ से तो हाथ को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से यूं भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और आपके चरणों में मेरा मुकुट सहित सिर है वो आपके चरणों में यूं पकड़ लिया। भगवान कहते हैं अर्जुन इसके हाथ में शस्त्र नहीं, अभी इसको मार दो, मार। अर्जुन बाण लगावे, उसके पास बाण लगे ही नहीं, वो बाण यहीं तक रह जाएगा। अर्जुन की ये भी कोई बात है, मैं निशाना लगाता हूं, बाण लगता ही नहीं। भगवान के बाण लगा ना इसके, देख मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा पैर पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं, बाण लगा, महाराज बाण लगते ही नहीं। इतने में ही भगवान का चरण तो छोड़ा और अर्जुन पास में था, अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने जोर से धक्का लगाया, ताम्रध्वज बज गए, वो गिर गया, पर दोनों का हाथ पकड़ा, दोनों गिर गए। तो ताम्रध्वज तो फुर्ती से उठ गया और दोनों को मूर्छा आ गई, किनको, कृष्ण और अर्जुन को। ताम्रध्वज ने कहा घोड़ा ले चलो आगे, घोड़ा लेकर के जहां पिताजी यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे और ताम्रध्वज ने वहां बड़ाई की कि देखो महाराज युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ हो रहा है, उसका घोड़ा आज हमने पकड़ लिया है, सेना को हमने हरा दिया है और कृष्ण और अर्जुन मूर्छित वे वे पड़े हैं। राजा नाराज हो गया, पिताजी ये क्या किया तुमने, तुझे सोचना चाहिए था युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ के समय मैंने राजसु यज्ञ किया है। क्यों मैंने इसलिए किया है कि कृष्ण और अर्जुन जरूर आएंगे और कृष्ण और अर्जुन जब यहां हमारे यज्ञ में आ जाएंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा, तुमने दूर कर दिया, हम ये अच्छा नहीं किया, शत्रुता का काम किया है, मूर्खता का काम किया है। इधर भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों होश में आए, मूर्छा छूटी, पिता पुत्र दोनों उनके पास आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पिता पुत्र दोनों ने प्रणाम किया, प्रणाम करके और कहा महाराज आप हमारे यज्ञ में पधारिए। अर्जुन ये समझ नहीं रहे थे कि एक छोटे से बच्चे से हम कैसे हार गए। अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जानी लियो, दियो रस भारी आई रोगियों मिटाई। फिर मोरध्वज प्रसन्न हो गया, सब होकर के भगवान सब लौट गए। उसके बाद दिमाग में अर्जुन के यही था कि मैं कैसे हार गया, मैं कैसे हार गया। अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जानी लियो, भगवान जान गए कि अर्जुन के मन में घमंड है। रस भारी याही रोगी यो मिटाई, इसको मैंने सख्य रस दिया है, रस सख्य प्रेम दिया है, उस प्रेम का इसको अभिमान हो गया, ये कैसे मिटे। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई हमारे कई प्रकार के भगत होते हैं, उसमें तेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा महाराज आज तक किसी के आपने रथ हाके हैं क्या, किसी भगत के? मेरे अंदर कुछ भक्ति देखी तभी तो आप मेरे रथ को हाके, किसी के रथ को हाके क्या? असंख्य असंख्य प्राणियों के बीच में मेरे गले में हाथ डालकर मित्रता के समान आप कहीं चले हैं क्या? मेरी जितनी उलाहना आपने किसी की सुनी है क्या? मेरे यज्ञ में आपने ऊंची पत्तल उठाई थी, ऊंची पत्तल, ऐसा काम कहीं किया था क्या? इसलिए मैं तो यही समझता हूं कि मेरे जैसा भगत आपको मिला ही नहीं। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, जैसे समुद्र का अंत नहीं आता, जैसे आकाश का अंत नहीं आता, जैसे संख्याओं का अंत नहीं आता, ऐसे मेरे भक्ति भी एक सागर है, भक्ति एक आकाश है। अपनी अपनी शक्ति से आकाश में सब उड़ते हैं, लेकिन आकाश को कोई नाप सका? समुद्र में कितने प्राणी रहते हैं, अपनी अपनी शक्ति से घूमते हैं, लेकिन कोई समुद्र को नाप सका? ऐसे मेरी भक्ति भी सागर के समान है, जिसको जितनी प्यारी लगी वो उतनी भक्ति का रसास्वादन करता है, पर मेरी भक्ति की पूर्णता तक थोड़ी पहुंचा जा सकता है। कैसे भगत भी हैं क्या आपके जो हमसे ज्यादा हो? यदि ऐसे हो तो हमें दर्शन कराओ। ठीक है, ऐसा करो, मैं तो बनता हूं एक बूढ़ा ब्राह्मण और तू बन जा मेरा छोकरा। ठीक है, बूढ़ा ब्राह्मण बने, भगवान अर्जुन को बनाया छोकरा और चले आए यहां। मोरक ध्वज गई थी, दरवाजे पर आए, सूचना दी जाओ। एक ब्राह्मण आया है अपने पुत्र के साथ, राजा को सूचना दो। राजा को सूचना दी, द्वारपाल ने आकर कहा महाराज, राजा ने कहा है कि उनको थोड़ी देर विश्राम कराओ, मैं अभी पूजा पाठ करके आने ही वाला हूं। पूजा पाठ करेगा, आए हुए ब्राह्मण का सत्कार नहीं करेगा। पूजा पाठ लगा रखी, हम नहीं ठहरते, हम रुकने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम बिना भोजन किए और बिना यहां प्रसन्न हुए जा रहे हैं। बोल दो राजा, भगवान का नाटक लीला। जाके महाराज, वो ब्राह्मण देवता है तो बड़े बूढ़े, लेकिन वो तो बड़े नाराज हो गए और कहते हैं हम इस महल से अप्रसन्न होकर के जा रहे हैं। अरे ब्राह्मण अप्रसन्न हो जाएगा तो मेरी पूजा पाठ तो सब व्यर्थ। राजा बीच में दौड़ के आया, आकर के चरणों में लिपट गया, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। पूजा पाठ में व्यस्त रहने के कारण से मैंने ऐसा कह दिया, आप मेरे से असंतुष्ट होकर मत जाइए, अंदर पधारिए, हम एक शर्त पर चलेंगे, पहले हां करो कि वो प्रतिज्ञा पूरी करोगे। कि महाराज आप आज्ञा दो, नहीं पहले हां भरो तब हम खुश होंगे। देवी की प्रतिज्ञा करो, करी दू प्रतिज्ञा हम, जाही भांति सुख तुम में सोई मोको भाइये, मैं जो भी मांगूंगा सो तुमको अच्छा लगना चाहिए। क्या महाराज जो आप मांगेंगे सो देंगे, प्रतिज्ञा है, बस प्रतिज्ञा है महाराज। फिर कहने लगे देखो खुश हो गए भगवान। अब भगवान तो खुश ही थे, उनको तो अर्जुन को ही कुछ बताना था। कहा कि देखो हम बहुत दूर एक नगरी से आए हैं और हमारा ये लड़का है ये सयाना हो गया, विवाह के योग्य हो गया है, और तुम्हारे यहां गांव में एक बड़ा सुंदर कृष्ण शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है, कृष्ण शर्मा, उसकी एक सुंदर कन्या है, हम चाहते हैं कि हमारे लड़के का उसके साथ विवाह हो। बीच के लोगों ने आपस में कुछ हमको कहा है, कुछ उनको कहा है, लगभग विवाह तय सा ही है, इसलिए हम इस नगर में आए थे। यहां हमने सुना कि ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है, तो हम आपके यहां आ गए और आपके यहां आने लगे तो रास्ते में हमको एक सिंह मिला। उस सिंह ने कहा ये ब्राह्मण, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं, आज इस छोरे को खाऊंगा। तो मैंने उसको कहा सिंह को कि भाई मैं तो अब मरने चला हूं, इसकी जिंदगी बाकी है, तो तू मुझे खा ले, तेरे को तो भूख मिटाने से मतलब है, चाहे इसको खाए चाहे उसको खाए, मेरे को तो मुझे खा ले, इसको छोड़ दे, ये बच्चा है।
इसलिए भूख है उनका नहीं। मैं सिंह हूं, मैं तुम्हारा बुड्ढे का मांस क्या खाऊं? तुमने तपस्या की है, तपस्या से और तुमने उम्र भर दान पुण्य लिया है, इसलिए तुम तो जड़ गए। तुम जड़े हुए हो, तुम्हारा हम मांस नहीं खाएंगे। ये नवयुग है, नया जवान, नया खून, नया मांस, इसको खाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई देख, मैं एक जा रहा हूं शादी में, इसी की शादी के लिए जा रहा हूं। अब उनको मैंने वचन दे दिया कि मैं आऊंगा और मिलूंगा, तो मेरी थोड़ी वचन दोष में बात बात रह जाएगी। कोई और उपाय? अच्छा, एक उपाय करो, यहां का एक राजा है मोरध्वज, मोरध्वज का आधा शरीर काट करके और हमको दे दो, दे दोगे हम तुम्हारे पुत्र को छोड़ देंगे। हमने कहा दे दे, मोरध्वज तो बहुत अच्छा ब्राह्मण भक्त है, हमारे जीवन की रक्षा के लिए मोरध्वज का आधा शरीर हम आपको लाकर दे देंगे, हम प्रतिज्ञा करके आए। मिलियो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कई खावो मोही नहीं यही सुखदाई है। हमने कहा हमको खा लो, उसने कहा नहीं यही सुखदाई है। काऊ बांधी छाड़ियो निरप, आदो जो शरीर आवे तो ही आई तजो कही बात में जनाई है। उसने कहा कि नहीं, राजा का आधा शरीर आएगा तो मैं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तब उसकी पत्नी बोली, मोरध्वज की पत्नी कृष्ण भगवान से, अब यहां कृष्ण भगवान नहीं बूढ़े ब्राह्मण है, के ब्राह्मण देवता, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, आधा अंग मैं हूं, तो आप मुझे उनको दे दीजिए। भगवान ने देखा तो पासा हमारा फैल हो गया। क्या बोले? पतिव्रता स्त्री का एक एक शब्द होता है वो बहुत भारी होता है, भगवान के लिए भी भारी, कि बात कितनी अच्छी कही गई, इसको तो झुटला नहीं सकते। इतने में ही बेटा आया, बेटा ने कहा कि महाराज, मां बाप से बेटा अलग थोड़ा ही होता है। अभी मेरी मां बोली, उससे पहले आपने मेरे पिताजी के लिए कहा, तो मैं, मुझे मां और पिता दोनों का ही रूप हूं मैं, मुझे ले जाके उपस्थित कर दीजिए, क्योंकि ये जो लड़का है और मैं हूं लड़का हूं, इसका जैसा मांस वैसा ही, मेरा मांस इसका खून गर्म, तो मेरा जितनी तृप्ति मेरे खाने से होगी उतनी तृप्ति उनको मेरे पिता के खाने से थोड़ी ही होगी। भगवान ने मन में सोचा कि बात दोनों की बड़ी श्रेष्ठ है। बोली उठी तिया अर धंगी मोही जाए दे, वो पुत्र कहे मोको ले। पुत्र ने कहा मेरे को ले, और अर्धांगिनी ने कहा मेरे को ले। तो भगवान ने अब क्या करें? तो भगवान ने एक तो अरे अरे सुनो 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 कहना भूल गया, और सुधि आई है मेरे, तब एक एक बात याद आ गई। हम यूं जाने लगे तब कहा कि देखो मुझे मोरध्वज का ही आधा शरीर चाहिए, और वो आधा शरीर उसको काटे कौन? उसकी स्त्री और उसका बेटा, वो दोनों आरा लेकर के उसको काटे, और काटे तो ये दाया और बाया दो टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़ों में दाया टुकड़ा मैं खाऊंगा, बाया टुकड़ा पड़ा रहेगा। ऐसा कहा है, इसलिए रानी जी आप अलग हो जाओ, बेटा तुम भी अलग हो जाओ, तुम दोनों को तो ले जाएंगे नहीं, अब तुम दोनों मिलकर के मोरध्वज का सिर काटो, आरा लेकर। एक बात और कही उसने, सुनो एक बात सुत, लिया लिखकर रौत गा, चीरे धीरे धीरे नाई पीछे उन भागी। पीछे से कहा था उसने हमको कि वो धीरे धीरे चीरे, चीरे धीरे भोरे, धीरे धीरे सर, ऐसा नहीं एक साथ तलवार से काट दो, धीरे 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 काटे। और किनु भाई भांति आई नासा लागी, आयो जब धर्योद्रिग नीर भीर बाकर न चाखिए।
जब काटते काटते आप तीनों में से किसी के भी आंख में आंसू आ गया तो वो मांस अपवित्र हो, सिंह नहीं खाएगा। कितनी कठिन परीक्षा ली भगवान ने, सुनो। फिर कहा कि अच्छी बात है महाराज, स्त्री भी मजबूत रही। पुत्र ने कहा कि ठीक है, लाओ करो। करोत था वो लिए ही टेढ़ा करोत, एक तरफ स्त्री है एक तरफ पुत्र है। उसने क्या किया, राजा ने जाकर के स्नान किया, स्नान करके अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाया, राज तिलक कर दिया और स्वयं चंदन है और शंख चक्र गदा पद्म ये चिन्ह है ये अपने शरीर में वैष्णव चिन्ह लगाकर राम भगवान का स्मरण करते हुए बैठ गया। पत्नी और पुत्र ने दोनों ने विचार किया किसी भी प्रकार से आंख में ममता का आंसू लाना ही नहीं है, काटते हैं। भगवान कहते हैं बहुत ठीक है, और काटो और काटो, अभी तो आग तक आए हो और काटा, अब नाक तक काटा, अब ये मुंह तक आए, इतने ही बाएं आंख से एक बाएं आंख से आंसू, इधर उधर नहीं, क्या गया आंसू आ गया, इसका आंसू आ गया, नहीं 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 नहीं, ऐसा अपवित्र मांस हम नहीं ले जाएंगे सिंह के लिए। चले अन्न खाए गए पायस सुनाए बैन, नैन जल बायो अंग काम के ही नाखी, क्या कहे हम नहीं। तब राजा ने कहा महाराज मेरी विनती सुनिए, मेरी विनती सुनिए महाराज, मेरे पास आइए, मेरे पास पास में आकर आपके चरणों की सुगंध खाके कहता हूं कि मेरे बाएं हाथ में आंसू इस बात के लिए आए हैं, ये दाहिना अंग तो आज बहुत पवित्र हो जाएगा। एक ब्राह्मण मांगता है एक सिंह की तृप्ति होगी, लेकिन ये अंग यूं ही पड़ा रहेगा, किसी के काम नहीं आएगा, इसको जला देंगे कोई से काम नहीं आएगा। इस बात से दुखी हो रहा है महाराज, मरने से दुखी नहीं हो रहा है। सुनी भरी आयो यो निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाषी। जब उसने ये बात कही तो भगवान ने उनके सिर पर हाथ रख दिया, मोरत बज गई, सब हटा हटा के हाथ रख रहे, एकदम स्वस्थ हो गए और अपने दर्शन दिए। अब वो तो कोई रोए नहीं, भगवान रोते रह गए, भगवान खूब रोए भगवान कि तुझे मैं करोड़ वरदान दे दूं ना, करोड़ वरदान तो भी मेरा दुख कम नहीं होगा, तुम्हारे पत्नी के और पुत्र के आंख में आंसू नहीं आया, तुम घबराए नहीं, और तुमको ये पता ही नहीं था कि मैं हूं मांगने वाला, तुम तो केवल एक नीरा ब्राह्मण और एक नीरा सिंह समझ करके इतना बड़ा त्याग किए। मांगो बर कोटि चोट बदलो ने सुकत है मुख सुधी आयु, यही हाल है, मेरा तो मुंह सूख जाएगा, अब तुझे कुछ नहीं दूं तो भी अच्छा नहीं लगे, तुझे सब कुछ दूं तो मुझे कम मालूम दे, मेरी हालत खराब हो गई मोरद्वज जी, क्या करूं, मोह पे तो दियो न जाए निपट रिझाए लियो, ताऊ रिझे दिए बिना मेरे ही ये साल है, तुझे कुछ नहीं दूं तो मेरे हृदय में साल है, मेरे हृदय में चुभन रहेगी चुभन, कुछ मांगो करोड़ वरदान मांगो तो भी मैं उसको कम मानूंगा। मोहरध्वज रोने लग गया कि महाराज जी क्या बात कहते हो, शरीर किसका है, ये जीवन किसका है, ये पत्नी किसकी है, ये पुत्र किसका है, ये राज्य किसका है, सारा परिवार सारा कुटुंब सारा वैभव ये प्राण सब आपके ही तो है। बोलियो भक्तराज तुम बड़े महाराज कहू थोड़े वो करत काज मानोकृत जाल है, आप थोड़े से बात को बहुत बड़ा मानते हो, हम तो इस संसार में अचंभा करते हैं। वो कहता है मोरद्वज कहता है कि आप इतने सीधे कि थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, आपका कोई एक बार मरते मरते नाम ले होंगे सारे जन्म के पाप कट जाए, अनंत जन्मों के पाप कट जाए एक नाम के उच्चारण में। कितने सीधे कितने भोले आप। अब आपने कहा कि मुझे दिए बिना न रहा जाए, तो अब आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं, वो तो आप कृपा करके दे दीजिएगा। एक मौको दीजिए दान दियो जो बखानो बेगी। भगवान ने कहा जल्दी कहो, मैं देने के लिए आतुर हो रहा हूं, जल्दी मांगना। तो कितना सुंदर मांगा है, साधु पे परीक्षा जानी करो कली काल में। महाराज ये कलियुग का समय आ रहा है, आप किसी भी साधु की किसी प्रकार से परीक्षा मत लेना। परीक्षा के अंदर तो महाराज सब फैल हो सकते हैं, परीक्षा मत लेना। जो जैसा है, जो भगत जैसा है अपना करता है वो करने दो महाराज, आप उसके क्रियाकलापों पर आंख बंद करके रहो। इतना देखो मेरी भक्ति करता है बस ठीक है, ज्यादा गहराई से मत देखना महाराज, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक मौको दीजिए दान दियो जो बखानो बेगी। साधु पे परीक्षा जनी करो कली काल है। एक एक ऐसे आप परीक्षा लेंगे तो सब भगत लोग बिचारे फैल हो जाएंगे, आपकी परीक्षा के सामने कौन आ सकता है। भगवान ने कहा जाओ अब हम ऐसी परीक्षा कभी किसी की नहीं लेंगे, और जो तुम्हारी ये कथा सुनेंगे उन सब के अंदर मेरी भक्ति का उदय हो जाएगा। इस प्रकार से ये कथा सुनाई। और अभी तो कथा तो भाई ये भक्तमाल में एक एक भक्तों की बहुत है, तो भक्तमाल तो आपने सुन लिया। अब राम जी का चरित्र कल से आप पढ़ोगे ही, गौशाला के अंदर 12:15 बजे से है। और